तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। समाचार पूछे कजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए।
ओम शांति। तो आज भट्ठी के तीसरे दिन में प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। दीदी का लौकिक और अलौकिक जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में हुआ है और फिर 1980 में या उससे पहले भारत में दोनों ही रीति से आए, लौकिक और अलौकिक रीति से, और 1980 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। 1980 से लेकर 1992 तक मुंबई विले पार्ले में बेस्ड रहकर आपने खूब सेवाएं की और 1993 में आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली मधुबन निवासी बनने की। तो 93 से आप हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं देश विदेश में हेडक्वार्टर के सभी कैंपसेस में दे रहे हैं और तब से लेकर आज दिन तक की इस यात्रा में आपने काफी कुछ हासिल किया है और उस उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप आपको ब्रह्मा कुमारी परिवार अलग अलग टाइटल देता रहा। सबसे पहले आपको टाइटल मिला सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप अर्थात SML कराने वाली उषा बहन जी। उसके बाद में आपको टाइटल मिला शास्त्रों की कहानियां सुनाने वाली उषा बहन जी। उसके बाद आपको टाइटल मिला गीता का ज्ञान सुनाने वाली उषा बहन जी और फिर बाहर की यूनिवर्सिटी ने वर्तमान में रिसेंटली आपको टाइटल दिया डॉक्टर उषा बहन जी। तो बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं, बहुत ट्रैवलिंग भी करते हैं, बहुत अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। तो ऐसी महान विभूति आज हमारे सामने, जो हमारा ज्ञान का बेसिक है, जो हमने मैं और मेरे को मिला दिया था, शरीर और आत्मा को मिला दिया था, बाबा ने आके अलग अलग कर दिया। शरीर मेरा है और मैं आत्मा हूँ। अब इस मैं आत्मा राजा का जितना भी मेरा 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 है, उस पर कितना कंट्रोल है, कितना रूलिंग है, वो आज हम समझेंगे। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के पास जब से आए हैं तो बाबा अपने हर बच्चे को अनेक ज्ञान रत्नों से तो सजाते हैं, गुणों से सजाते हैं और शक्तियों से निखारते हैं। बाबा कहे सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे हैं हम सभी, तो शक्तियां हमें बाबा अधिकार के रूप में देते हैं। उसमें भी विशेष अष्ट शक्तियां तो हमें योग के सिद्धि के रूप में प्रदान करते ही है बाबा, परंतु ये अष्ट शक्ति के साथ साथ बाबा और भी शक्तियां हमारे अंदर भरते हैं। जैसे कहा रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये भी शक्ति है। संगम युग में बाबा की याद से, योग से जो सिद्धि हमें प्राप्त होती है, वो इसी शक्तियों की सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु जब तक उसको यूज न करो तब तक वो वृद्धि को नहीं पाती है। बाबा की ब्लेसिंग्स तो हम सभी बच्चों को मिलती ही है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स के साथ साथ जितना उसको यूज करते जाते हैं उतना वृद्धि को प्राप्त होती है। तो इसलिए बाबा कहे कि बच्चे ये शक्तियों को यूज करो। और ये शक्तियां क्यों चाहिए? जिसको देवियों के हाथों में शस्त्र के रूप में दिखाया, तो वास्तव में यही तो शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां खाली शोभा के लिए तो नहीं है, इसलिए बाबा कहे इसका प्रयोग करो, अपनी जीवन में प्रयोग करो, बुराइयों के ऊपर प्रयोग करो। तो शक्ति संपन्न सहजता से बन जाएंगे। जिस तरह से कहा कि संगम युग में सर्वशक्तिमान बाप आकर के हम बच्चों को शक्तियों का पूर्ण खजाना दे देते हैं, सर्वशक्तियों का खजाना देते हैं, लेकिन यही शक्तियां गुण में परिवर्तन हो जाती सतयुग में। इसलिए सतयुग के देवताओं की महिमा जब गाते हैं तो सर्व गुण संपन्न कहते हैं, सोलह कला संपूर्ण कहते हैं। देवताओं को कभी सर्व शक्ति संपन्न नहीं कहा जाता है। सर्व शक्तियों का वर्षा हमें संगम युग में मिलता है सर्वशक्तिमान बाबा से। और जितना जितना उसका प्रयोग करते जाते हैं तो वो शक्तियां निखरते निखरते वो गुण में परिवर्तन हो जाती है और वो गुण स्वरूप सतयुग में बन जाते हैं। तो यहां ये कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर चाहिए, सतयुग में तो उसकी आवश्यकता नहीं है। सतयुग में किस पर कंट्रोल करना है? न स्व के ऊपर कंट्रोल करना है, न औरों के ऊपर कंट्रोल करना है। तो इसलिए कहा कि ये संगम युग का वर्षा है, सतयुग में इसकी आवश्यकता नहीं, कोई भी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। न वहां परख शक्ति चाहिए, न सहन शक्ति चाहिए, ये सारी शक्तियां यहां चाहिए। अब रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर कहते हैं तो सबसे पहले स्वयं की इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, उसमें भी खाली कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना इतना नहीं, लेकिन बाबा तो सूक्ष्म स्तर पर हम बच्चों को ले जाते हैं और बाबा कहते हैं अपनी ज्ञानेंद्रिय के ऊपर भी अधिकार प्राप्त करो। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है जिसको बाबा क्लासिफाई करते हैं मन बुद्धि संस्कार चित्त और वृत्ति, ये ज्ञानेंद्रियां है हमारी। तो इसलिए इन सब के ऊपर हमारा अधिकार चाहिए। जितना स्थूल पर होगा तो सूक्ष्म पर प्राप्त करना सहज हो जाएगा। लेकिन बाबा ने साकार में जब थे तो दादियां जब बाबा की बातें सुनाती थी तो बाबा ने यज्ञ के अंदर कभी भी किसी के ऊपर कंट्रोल करना नहीं चाहा। चाहे इतने बच्चे थे बाबा के सामने 350 बच्चे थे, लेकिन बाबा ने कभी किसी के ऊपर रूलिंग पावर अपना दिखाया नहीं, कंट्रोलिंग पावर दिखाया नहीं। क्योंकि कभी भी आप किसी को भी कंट्रोल करने का प्रयत्न करो तो क्या हो जाएगा? आज अक्सर माता पिता की शिकायत रहती है, क्या शिकायत रहती है? बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना? शिकायत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा अधिकार है, ये मेरा बच्चा है। जो आज बाबा ने कहा जहां ये अधिकार आया ये मेरा है और मेरेपन का अधिकार होने कारण आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल में आते हैं? जितना ही कंट्रोल करने चाहो बच्चों को उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। जितना ही उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं उतना ही वो करके दिखाते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? आप उसको कहो ये चीज नहीं करना है, ये ठीक नहीं है, क्या करेगा? और करेगा। क्यों? आज एक बच्चे का कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं को पूछो क्या मेरा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल है? कंट्रोल है? हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है? कई बार मां बाप बच्चों से कहते हैं बच्चे एग्जाम आई अभी टीवी नहीं देखना है, कहते हैं ना, बच्चों को मना करेंगे टीवी नहीं देखना है और खुद देखने बैठेंगे। बच्चे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। कभी भी कंट्रोल करने से कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चे टीवी न देखे ये आपकी चाहना है तो आप खुद भी न देखो, ये त्याग खुद को करना होगा। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए सबसे पहली चीज आवश्यकता है त्याग। बिना त्याग के आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो नहीं देखें, तो आपको भी त्याग करना होगा कि मैं भी इतना दिन बंद कर देती हूं। जब आपने बंद कर दिया तो बच्चे आपके मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आप उनको कहो रूम में पढ़ाई करो, यहां आप सीरियल देख रहे हैं, क्या होगा? फिर वो नहीं मानते हैं। बाबा ने यहां यज्ञ में ये सिखाया, बच्चों के लिए बाबा ने त्याग किया। बाबा ये कमरे में रहे, कमरा अभी तो बहुत अच्छा कर दिया, पीछे एक्सटेंड कर दिया। बाबा जब रहते थे तो छोटा सा कमरा था, जो आगे का हिस्सा है वही कमरा था, जिसमें बाथरूम भी नहीं था। बाबा बाहर जाता था बाथरूम। जब भी ये ट्रेनिंग सेंटर बना, ये बना, बाबा कहते थे, बच्चों ने कहा बाबा आप उस मकान में जहां लेटरिन बाथरूम अटैच्ड है वहां चले जाओ। बाबा ने कहा नहीं, ये बच्चों के लिए है, बाबा यहीं रहेगा। तो बाबा ने त्याग किया, इसीलिए आज बाबा के प्रति इतना रिगार्ड है। और बाबा की मुरली में भी जो श्रीमत आती है उसको पालन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। अगर बाबा ही अपने लिए सब अच्छा, अच्छा चलो इसमें सबसे अच्छा कमरा मेरे लिए बना दो, तो आज यादगार ये कमरा होता था? यादगार ये कमरा नहीं होता था। तो बाबा ने हमेशा कहा ये बच्चों के लिए। बाबा अपनी झोपड़ी में रहेंगे, 93 इयर्स की एज में भी बाबा ठंडी में बाहर जाते रहे, स्नान आदि करने के लिए जनरल का बाथरूम में यूज करते रहे, लेकिन बाबा ने अपने कमरे में अटैच बाथरूम लेटरिन नहीं बनवाया के नहीं। और जो ट्रेनिंग सेंटर में बना, ये हिस्ट्री हॉल के आगे बना, बाबा ने उसमें अपने लिए सेपरेट कमरा नहीं बनाया। तो त्याग किया बाबा ने, इसलिए आज हर बच्चे के मन में बाबा के प्रति वो सम्मान है, रिगार्ड है। ठीक इसी तरह आप अपने बच्चे के मन के अंदर अगर रिगार्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? खुद को त्याग करना पड़ेगा, तब बच्चे आपके कंट्रोल में स्वतः आ जाएंगे। लेकिन आप बच्चों को कहेंगे और आप खुद नहीं करेंगे और फिर अपेक्षा रखो ये बच्चे नहीं करे, तो क्या होगा? वो सुनेंगे ही नहीं। तो बाबा ने हर चीज प्रैक्टिकल में करके सिखाया, कह के नहीं सिखाया, है ना? मुरली में शिव बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा ने स्वयं प्रैक्टिकल करके दिखाया। बाबा ने कभी बच्चों को ये ऑर्डर नहीं किया बच्चे अनाज साफ करने चले जाओ, खुद बाबा मम्मा जाते थे। और बाबा मम्मा जाते थे तो सारे बच्चे जैसे देखते थे, अरे बाबा मम्मा अनाज साफ करने बैठ गए, सारा अपना अपना इधर उधर जो बैठे होते थे छोड़ करके वहां पहुंच जाते थे। करके सिखाना होता है। तो एक पहली बात त्याग, दूसरा कहने के बजाय करके दिखाना होता है। बाबा कई बार हर बच्चे को हर एक जगह पर जाते थे, जैसे कभी धोबी घाट में चले गए और वहां जाने के बाद भी बाबा उस चीज को ज्ञान युक्त बच्चों को समझाते थे कि देखो बच्चे ये कपड़े की भट्टी रखी ना, सारी रात उसको गर्म पानी के अंदर रखा, सुबह धुलाई कर रहे हैं, अब बहुत सड़ा हुआ कपड़ा होगा तो दो सटका मारेंगे फट जाएगा। ऐसे ही बाबा भी अगर किसी को जोर से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? तितर बितर हो जाएगा। ज्ञान देता था उसमें, ज्ञान युक्त बातें बाबा की होती थी। तो इसीलिए बाबा की हर बात लोग सुनते थे, है ना? साथ ही साथ जब याद आता है कि एक बार हमारी निर्मल शांता दादी थी ना, तो गाड़ी चलाती थी, बाबा की गाड़ी दादी चलाती थी, और बस थी, एक बस थी एक गाड़ी थी। तो बस जो है वो बच्चों को लाना ले जाने के लिए, तो निर्मल शांता दादी बस चलाती थी। तो जब बस चलाती थी तो दादी ने एक बार बाबा से कहा, बाबा इसके टायर अभी सब गए, अब बदली करनी पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो बाबा ने जैसे ही कहा बदली करवा दो, अच्छा तो पुराने टायर निकले उसके क्या करें? तो बाबा ने कहा कि बच्ची इसका चप्पल बना दो, और सभी को, बेगरी पाठ तो था ही यज्ञ के अंदर, बाबा ने कहा ये सब चप्पल, पहली चप्पल मैं पहनूंगा, मेरे लिए चप्पल बनाओ। तो निर्मल शांता दादी बाबा को देखने लगी, चप्पल बनाएंगे इसके? बाबा ने कहा क्यों नहीं, है ना? बाबा तो निर्मल शांता दादी ने कहा, बाबा मैं कोई मोची थोड़ी हूं जो मैं चप्पल बनाऊंगी। तो बाबा तो इतना ज्ञान युक्त तो उसको लेते थे, कभी जैसे ऑर्डर नहीं करते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची सतयुग में महारानी बनना चाहती हो? हाँ, बोले बनना चाहती हूं। अगर मोची जितनी अक्कल नहीं होंगी तो राज क्या चलाएगी, है ना? अगर मोची जितनी भी अक्कल नहीं, अब कहां, लेकिन उस समय बच्चे बाबा के भोले थे, है ना? कहां मोची और कहां जो है ये राज चलाने की बात। कहा अगर कोई मोची तुम्हारे पास आ गया, राजा के पास आ गया, रानी के पास आ गया कि इसकी मुझे समझ दो थोड़ी, तो तुम कहेगी मेरे को, तो तुम राज क्या चलाएगी? हर कोई तेरे पास आ सकता है। तो निर्मल शांता दादी के मन में आया, अच्छा ठीक है बाबा मैं बनाती हूं। मैं तभी तो बोले सर्व कलाओं से संपन्न होगी ना तो महारानी बनेगी, 16 कला सम, एक चप्पल भी बनाना आना चाहिए। देखो बाबा कैसे समझाते थे, है ना? ऑर्डर नहीं किया, नहीं तेरे को बना, मैंने कह दिया ना एक बार तेरे को बनाना ही है, ये नहीं बाबा ने यूज किया। ये शब्द का प्रयोग नहीं था बाबा की लाइफ में, है ना? लेकिन कहा पहली चप्पल बनाओगी ना बाबा पहनेगा, और बाबा ने पहनी तो सारे बच्चों ने भी पहनी, है ना? और इतनी सुंदर चप्पल बना करके बाबा के लिए ले आए निर्मल शांता दादी, बहुत अच्छी तरह से बनाई, बाबा ने पहनी, कितनी खुशी हुई, बनाने वाले को भी कितनी खुशी हुई। फिर कभी कोई ऐसी बात होती थी ना तो बाबा भरी सभा में क्लास में कह देता था, वो तो शिव बाबा ऑलमाइटी कहता था, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव के आधार से भी बोलता था, लेकिन फिर भी शिव बाबा कहते हमेशा समझो शिव बाबा समझा रहा है। तो कोई ऐसी बात होती थी ना तो बाबा मुरली में सुना देते थे, या रात्रि क्लास होता था ना तो उसमें बाबा सुना देते थे। तो एक बार किसी बच्चे ने कोई गड़बड़ किया होगा, कोई काम में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, बड़ी गलती हुई होंगी, यज्ञ का थोड़ा नुकसान हुआ होगा, तो बाबा ने जो है ना रात्रि क्लास में निर्मल शांता दादी को खूब डांट लगाई। अब निर्मल शांता दादी को कुछ पता ही नहीं कि ये क्या हुआ और क्यों बाबा मुझे डांट रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर जो है दूसरे दिन जो है बाबा को घुमाने ले जाना था निर्मल शांता दादी को, तो गाड़ी निकालने के लिए कहा बाबा ने, तो गाड़ी निकाली। निर्मल शांता दादी जरा फीलिंग में थे, तो बाबा ने इसीलिए खास कहा कि बच्ची गाड़ी निकालो बाबा घूमने जाएगा। तो गाड़ी में बैठकर बाबा लेके गए निर्मल शांता दादी। तो रास्ते में बाबा ने पूछा कि क्या हुआ बच्ची, तेरे को कुछ हुआ क्या? कहा बाबा मेरे को कल कुछ पता ही नहीं, और कल आपने भरी क्लास में मेरे को डांट लगा दी, मेरे को पता ही नहीं कौन सा यज्ञ का नुकसान हुआ, क्या हुआ मुझे, मैंने तो कोई नुकसान किया ही नहीं, फिर आपने मेरे को क्यों डांटा? तो बाबा कहते हैं देखो ऐसा है, दुनिया में भी कहावत है कि बेटी को कहो तो बहू सीखेगी, है ना? तो बाबा बच्चों को डायरेक्ट कहेंगे, उनको फीलिंग आ जाएंगी, और फीलिंग आ जाएंगी फिर उनको मनाना कितना एनर्जी लगेगी। अब तेरे को बाबा ने कह दिया है ना, तो कहा मेरे को भी तो फीलिंग आई ना, दादी ने कहा मेरे को भी तो फीलिंग आई ना, तो कहा देखो तेरे को जो फीलिंग आई ना, तू कभी बाबा का हाथ छोड़ के जाने वाली तो है नहीं। दूसरे बच्चे फीलिंग में आकर के बाबा का हाथ छोड़ दिया तो बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा, बाबा पर चढ़ेगा ना, इसलिए बाबा ने तेरे को कह दिया। लेकिन वो समझ गए है ना, बाबा कितना युक्ति से कहता था, तो तेरे को कहा तो वो समझ गए। तो निर्मल शांता दादी कहती है तो अगले कल्प में मैं बाबा को बोलूंगी कि मेरे को आपकी बेटी बना है ही नहीं, है ना, ऐसे रूढ़िहान करते थे कि अगले कल्प में मैं बाबा। लेकिन बाबा हर चीज कितना युक्ति युक्त चलता था, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना, तो शुरू शुरू में कितने टीथिंग ट्रबल्स जिसको कहा जाए वो आए होंगे बाबा के सामने, लेकिन फिर भी बाबा ने कभी बच्चों के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाया कि मेरे बच्चे मेरा सुनना चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए, ये बाबा ने अधिकार नहीं रखा। लेकिन युक्ति से बाबा जैसे हर बच्चे को समझा भी देते थे, सम्मान देते थे। गुलजार दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती थी तो कहती थी कि जब हम हॉस्टल में थे जहां सारे बच्चे होते थे, बच्चों का हॉस्टल था ना, छोटे छोटे बच्चे जिसमें ईशु दादी, फिर लच्छू दादी, कुंज दादी, ये सारी दादियां वो हॉस्टल में थी, बच्चों के हॉस्टल में। तो वो बच्चे आप सोचो जैसे आपके बच्चे हैं, तो वो सारे भी तो छोटे बच्चे थे, लेकिन बाबा हमेशा स्नेह देता था और सम्मान देता था, उन बच्चों के अंदर भी स्वमान को जागृत करता था। ये बाबा का तरीका था कंट्रोलिंग पावर के लिए, स्नेह देता था, खूब स्नेह, वहां तक कि उन बच्चों को संभालने वाली जो माताएं होती थी, बाबा उन माताओं को भी कहते थे इन बच्चों को कभी डांटना नहीं, ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, इनकी पूजा करना, ये देवता है, ये स्वमान वो बच्चों के अंदर भी जागृत करते थे। अब जिनको कहा, माताओं को कहा इन बच्चों को कभी डांटना नहीं, ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, इतनी इज्जत करना। अब जो बच्चे थे चैतन्य ठाकुर, वो कुछ गड़बड़ करेंगे, तूफान मस्ती करेंगे, जब उनको स्वमान जागृत कर दिया कि तुम चैतन्य ठाकुर हो, छोटे बच्चे तो ईश्वर का स्वरूप होता है, वो पूजनीय है, ये कन्याएं तो पूजनीय है, कितना बाबा उनके अंदर स्वमान जागृत करता था और इतना सम्मान देता था और इतना स्नेह देता था। तो सारे बच्चे, एक एक बच्चों को देखो, चाहे गुलजार दादी कैसी क्वालिटी, 6 साल की आयु में बाबा किस पास आई थी, लेकिन ये स्वमान जागृत करके उनको क्या से क्या बना दिया, ईशु दादी को क्या से क्या बना दिया, कुंज दादी को क्या से क्या बना दिया, है ना। तो ऐसे ज्ञान मूरत गुण मूरत बाबा बना, ये बाबा का तरीका था कंट्रोल करने का। बाबा ने इसीलिए कभी मेरेपन का अधिकार नहीं जताया कि मेरे है इसलिए उसको ऐसे ही चलना होगा, ऐसे ही करना होगा, ये कभी जताया नहीं। दूसरी बात कि आज भक्ति में भी अपनी कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करने का तरीका कौन सा अपनाया, अपनी कर्मेंद्रिय का तरीका अपनाया व्रत नियम संयम। भक्ति में भी अपनाते हैं ना, क्यों व्रत रखते हैं भाई, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखा। कई लोग जैसे संक्रांति पर एक व्रत लेते हैं, साल भर चलाते हैं, नहीं कई लोग व्रत रखते हैं, नियम रखते हैं कि भाई कोई ना कोई देवी देवता का नाम लेकर के ही खाने का होता है, ताकि अगर उनके अंदर कोई चोरी से खाने का संस्कार हो तो वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई राधे कृष्ण बोल करके ही खाना है। अब जब भी खाना खाने बैठेंगे तो बोलेंगे राधे कृष्ण, तो वो सामने वाला भी माना उस बहाने से याद आए ईश्वर की, और चोरी के संस्कार, चोरी से खाने के संस्कार न पड़े। ये तरीका होता था भक्ति मार्ग में कि व्रत में बांध दो, कोई ना कोई नियम में बांधो, ताकि उस बंधन में आने से व्यक्ति के संस्कारों में परिवर्तन आता है। नहीं तो क्या होगा, कोई नहीं देख रहा है खा लिया, कोई नहीं देख रहा है इसलिए ये चला लिया। नहीं, जब खाना खाने बैठो तो जैसे ईश्वर का नाम लेकर के उसके बाद वो खाना आरंभ करो, तो अगर कोई नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे कि चलो कोई आएगा उसके बाद पूछ के खाएंगे, है ना, तो वो चोरी के संस्कार समाप्त हो जाते। इसीलिए भक्ति मार्ग में व्रत रखा गया, 9 दिन का व्रत, खाने पीने का खास करके उपवास या संयम रखने के लिए ये व्रत रखा जाता था। अब व्रत से क्या होता था, व्रत से कहा जाता है विल पावर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है व्रत से, विल पावर कैसे बढ़ेगा, क्या कनेक्शन व्रत और विल पावर, विल पावर तो आत्मा का है। तो अगर खाने का कंट्रोल किया तो उससे मेरा विल पावर कैसा बढ़ेगा, उसके पीछे साइंस ये है कि व्रत रखने से वृत्ति में दृढ़ता आती है, वृत्ति जो है उसमें दृढ़ता आती है, और जितनी हमारी वृत्ति में दृढ़ता आए तो हमारा चित्त एकाग्र हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना चित्त वृत्ति, इकट्ठा बोला जाता है चित्त वृत्ति। तो व्रत से वृत्ति का शुद्धिकरण होता है, और जितना वृत्ति का शुद्धिकरण होता है उतनी चित्त की एकाग्रता सहज आती है, और चित्त की एकाग्रता हुई तो जब योग में बैठेंगे चित्त एकाग्र हो जाएगा, तो जो शक्ति प्राप्त होगी योग से, ध्यान से, उससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, तो विल पावर बढ़ता है। ये इसके पीछे का साइंस, इसलिए लोगों ने व्रत रखा, ताकि व्रत से वृत्ति की शुद्धि, और वृत्ति की शुद्धि से चित्त की एकाग्रता, और चित्त की एकाग्रता से ही तो सफलता मिलती है। दुनिया के अंदर भी आज एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में सफलता कब मिलती है, जब एकाग्रता से अभ्यास करता है तब उसको सफलता हासिल होती है। तो इसी तरह योग में भी मन एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि वृत्ति की शुद्धि नहीं है, वृत्ति की शुद्धि नहीं है, इसलिए चित्त भटकता है। कई लोगों की शिकायत होती है योग में बैठते तो है लेकिन चित्त की एकाग्रता नहीं है, संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं, मन भटकता बहुत है। क्यों भटक रहा है, क्यों व्यर्थ संकल्प आता है, क्यों हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है, क्योंकि वृत्ति की शुद्धि नहीं है, है ना? और वृत्ति की अशुद्धि कैसे है, तो वृत्ति शब्द निकला है वृत्त से, वृत्त यानी सर्कल। कोई चीज का बार बार सर्कल आपके, तो वो वृत्ति बनने लगती है बार बार वो संकल्प करने। तो कोई भी संकल्प चाहे व्यर्थ हो चाहे अच्छे हो, कोई संकल्प बार बार, व्यर्थ संकल्प बार बार करेंगे तो वो व्रत बनता जाता है, और वो हमारी वृत्ति को क्रिएट करता है। तो व्यर्थ संकल्प वृत्ति की अशुद्धि ले आता है, इसलिए वृत्ति अशुद्ध हो जाती है। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ स्वमान देता है कि बच्चे आप ये सोचो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो तो जब ये आप संकल्प बार बार करेंगे तो वृत्ति कैसी बनेगी? शुद्ध होने लगे। और वृत्ति अगर शुद्ध हुई तो चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता से जब अभ्यास करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो योग अभ्यास करने से वो सिद्धि का अनुभव यानी सफलता प्राप्त होगी। योग में बहुत सुंदर अनुभव होने लगे। जितनी वृत्ति की शुद्धि उतने अनुभव बहुत अच्छे होंगे। तो दुनिया में लोगों ने स्थूल कंट्रोलिंग पावर को अपनाया कि भाई उपवास करो, एक टाइम भोजन करो, व्रत रखो, कोई ना कोई व्रत रखते हैं ना, चाहे खाने पीने का व्रत रखा, चाहे कोई भी, कि आज से चलो भाई 9 दिन तक। कई लोग दुनिया में 9 दिन नवरात्रि के आए, कोई नॉन वेज नहीं खाना है, रखते हैं ना। कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाना, ये रखते हैं 9 दिन के लिए। तो 9 दिन में भी जब उसका अभ्यास करते हैं तो वृत्ति की शुद्धि होने लग, और कईयों की वृत्ति ऐसी शुद्ध हो जाती है जो फिर हमेशा के लिए अपना लेते हैं। ये विल पावर बढ़ा। एकाग्रता से जब उस देवी को भी याद करते हैं नवरात्रि के दिन, तो महसूस होता है कि देवी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि वृत्ति की शुद्धि हुई। तो बाबा ने भी हम सब बच्चों को नियम क्यों दिए हैं? वृत्ति की शुद्धि के लिए दिए कि बच्चे भोजन का परहेज रखो, प्याज लहसुन नहीं खाना है, अशुद्ध भोजन नहीं स्वीकार करना है, पवित्रता का व्रत रखो, ब्रह्मचर्य व्रत रखो। क्यों रखो कहा? क्योंकि उसी से हमारी शुद्धिकरण हो रहा है, और उसी से हमारी मन की एकाग्रता होती, और मन की एकाग्रता से जब योग अभ्यास करते, तो आप सब ने अनुभव किया कि कोई भी चीज संकल्प में आई और जैसे पूरी हो जाती है। कहते पहले कितना संकल्प करते थे तो भी पूरा नहीं होता था, और बाबा के बनने के बाद कोई भी सोचते हैं क्या होता है? पूरा हो जाता है। हर संकल्प बाबा पूरा करता है। बाबा पूरा कर रहा है या आपकी चित्त वृत्ति की शुद्धि के कारण आप में जो विल पावर आया उसने पूरा किया? तो इसीलिए हाँ, कहने में ये कह देते हैं कि करण करावन हर बाबा है, तो बाबा ने पूरा किया, ताकि खुद का ईगो ना आए बीच में, है ना? तो जीवन के अंदर चलते चलते रोब आ जाता है, क्रोध आ जाता है, है ना, अहंकार आ जाता है, और इन्हीं कारण ये चित्त वृत्तियां हमारी अशुद्ध हुई है। तो साल भर में जो थोड़ा बहुत बढ़ा, तो कहते नवरात्रि के 9 दिन करो, ये व्रत रख लो, थोड़ा शुद्धिकरण होता है, फिर वापस शुरू हो जाता है। लेकिन बाबा ने हमारा परमानेंट इलाज कर दिया। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें ये व्रत नियम सूक्ष्म स्तर पर लेना है। पवित्रता का व्रत खाली ब्रह्मचर्य को नहीं कहा। हाँ, पिछले संडे की मुरली याद करो, 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य की बात बाबा ने कही। तन से ब्रह्मचर्य, मन से ब्रह्मचर्य, संबंधों का ब्रह्मचर्य और संस्कारों का ब्रह्मचर्य। तो कितने सूक्ष्म स्तर पर बाबा ले जाते हैं शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि तभी हमारे शुद्धिकरण इस तरह से होता है जो हम स्वर्ग के लिए लायक बन जाते हैं। और दुनिया के अंदर भी सम्मान को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, बहुत सुंदर बात सुनाई। कहा कि जैसे कोई कंपनी होती है, तो कंपनी का अपना अपना जैसे आउटलेट होता है, जैसे माल सामान का। तो कोई कंपनी में वो कार्य कर रहे थे, तो वो कंपनी ने उसको कोई स्थान पर रखा था कि भाई वहां का जनरल मैनेजर तुम है करके उसको वहां बिठाया था। अब क्या होता था, बाबा का पक्का बच्चा, और पक्का बच्चा होने के कारण वो नियम मर्यादा में बहुत पक्का चलता था। हर 3-4 महीने में उनकी मीटिंग होती थी, तो वो मीटिंग में उसको जाना पड़ता था। अब जब जाना पड़ता था तो अपना टिफिन साथ लेके जाता था, एक दिन की मीटिंग होती थी तो टिफिन साथ लेके जाता था, और चाय कॉफी पीता ही नहीं था, इसलिए वो भी झंझट नहीं कि भाई बीच में चाय कॉफी आएगी, बिस्किट आएगी, वो खाएगा या पिएगा। तो बहुत पक्का बाबा का बच्चा। तो एक बार क्या हुआ, कोई पैसे का गफला हो गया, घोटाला हो गया, तो किसी ने ईर्ष्यावश इस भाई का नाम ले लिया, यही व्यक्ति है ये गफला करने वाला है ना, यही करता है पूरा, और सारे जैसे सबूत देना शुरू कर दिया उसने। अब ये कहता है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि मैं अपने आप को सिद्ध कर सकूं कि भाई मैंने नहीं किया है, मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो मैं मन ही मन बाबा को याद करने लगा कि बाबा आप तो जानते हैं मैं तो कोई ऐसा काम करता नहीं हूं, और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। लेकिन बाबा ने कहा था कि बच्चे सत्य को सिद्ध नहीं करना होता है, नहीं तो वो जिद बन जाती है, इसीलिए उसको सिद्ध नहीं करना, सत्य को वरदान है, स्वयं सिद्ध है। उसको बाबा का ये महावाक्य याद आ गया। तो वो बाबा को याद करते हुए सोच रहा था कि अभी मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, वो ही बोले जा रहे। तो जो डायरेक्टर्स बैठे थे उस कंपनी के डायरेक्टर्स, वो सुन रहे थे उस भाई की बात, लेकिन जानते थे, इस भाई को भी जानते थे कि ये शायद कोई संस्था में जा रहा है, बाहर का खाता पीता नहीं है, क्योंकि वो टिफिन लेके जाता था। जब लोग बाहर भोजन करने आते थे तो उनको कहते थे कि भाई तुम भी चलो, तो मना करता था कि नहीं, मेरा सिद्धांत है, मैं अपना टिफिन लेके आया हूं, मैं यहां बैठ के खाऊंगा, है ना। वो नहीं जाता था, तो ध्यान तो जाता था सबका। सारा सुनने के बाद वो डायरेक्टर में से एक जो मुख्य था वो बोलने लगा, अरे ये यहां का खाना नहीं खाता, यहां की चाय नहीं पीता, ये पैसा क्या खाएगा। देखो कंट्रोलिंग पावर अपनी इंद्रियों के ऊपर विजयी बना देता है उसको, और सबके आगे उसका सम्मान हो गया कि ये व्यक्ति यहां का भोजन नहीं खाता है, यहां की चाय कॉफी नहीं पीता है, ये पैसा क्या खाएगा। तो सत्य स्वयं में सिद्ध है कि नहीं है, कहां मेरे को सिद्ध करना ही नहीं पड़ा, मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही वो डायरेक्टर खुद बोलने लगा। और उस समय मैं बाबा को इतना थैंक्स दिया, इतना दिल से थैंक्स दिया कि बाबा आपने तो कमाल कर दिया, चमत्कार ही कर दिया। और कारण क्या था, मैं नियम मर्यादा में चलता रहा, श्रीमत का हाथ पकड़ के चलता रहा। तो जितना श्रीमत का हाथ पकड़ के चलता रहा तो क्या कहेंगे, जीवन कितना सुंदर बन गया। और इतना बड़ा इल्जाम लगने पर भी लगने नहीं दिया, बाबा ने कैसे उसको टाल दिया। और कहा उसके बाद तो ऐसा लगा कि मेरी इज्जत इन लोगों के नजरों में, बाकी के नजरों में भी बढ़ गई। तो बाबा के नियम मर्यादा का ये कमाल है, बाबा ने समय अनुसार ये नियम मर्यादाएं दी है हमें। शुरू में तो कहा जाता कि यज्ञ में जब बाबा ने पवित्रता के व्रत की बात की, खान पान के शुद्धि की बात की, तो उस समय तो सिंध में सब कैसे थे, अशुद्ध भोजन स्वीकार करने वाले, है ना, और भाई पवित्रता के बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो जब ये बात कही पहले तो बहुत विघ्न डाले, लेकिन फिर भी बाबा तो अपने उसमें मजबूत रहे, जो बच्चे आए वो भी मजबूत रहे। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि सब मिल करके बाबा से जाकर बात करते हैं। तो बाबा के पास आकर के कहने लगे कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा ज्ञान आप देते हो, हम सब चल पड़ेंगे, बस सिर्फ आप ये नियम मर्यादा हटा दो, इसको नहीं कहो, इसके ऊपर जोर नहीं दो, तो हम सब आपके साथ में हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने जैसे ही उन लोगों ने कहा यहां भीड़ हो जाएगी बाबा, सारे लोग यहां आ जाएंगे, बाबा ने कहा मुझे भीड़ थोड़ी जमा करनी है, मुझे तो वारिस बच्चे चाहिए, वारिस बच्चे चाहिए। तो जो ये नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं, श्रीमत का हाथ पकड़कर चलते हैं, उसको बाबा क्या टाइटल देता है? ये वारिस बच्चा है, वारिस है। जो कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो वो वारिस कहेंगे? बाबा के वर्षे के अधिकारी कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। तो वारिस बच्चा वही है जो बाबा के बताए हुए एक एक श्रीमत का यथार्थ रीति से पालन करते हुए अपने जीवन के अंदर उसको फॉलो करते हैं। ये बाबा के वारिस बच्चे। बाबा को वारिस बच्चे चाहिए, बाबा को भीड़ नहीं चाहिए। सत्युग में इतनी भीड़ थोड़ी जमा करनी है बाबा को, फिर तो वहां भी वही अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए बाबा कहे चुन चुन करके, बाबा वारिस बच्चों को चुन चुन करके ले जाता है, और जो वारिस नहीं बनता है त्रेता के अंत तक प्रजा में आते रहेंगे। त्रेता के अंत तक प्रजा में आते रहे, त्रेता में तो 33 करोड़ हो जाते हैं ना, तो प्रजा में तो आना चाहिए ना, कोई तो प्रजा भी होनी चाहिए, नौकर दास दासी भी होने चाहिए। इसलिए बाबा कहते थे राजधानी बन रही है। गुलजार दादी के पास कोई जाता था ना ये कहते हुए कि दादी फलाना ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, बाबा का बच्चा होने के बाद भी ऐसा करता है, तो दादी मुस्कुराती थी और कहती थी राजधानी बन रही है ना, आप राजा बनेंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, दास दासी कौन बनेगा, अगर सारे ही ऐसे बन गए तब तो फिर राजा की सेवा कौन करेगा। तो वो अगर प्रजा बन रहे हैं, वो दास दासी बनना चाहते, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है, आप राजा बन जाओ ना। वो खुद अपना फाइनल कर रहे हैं कि मुझे दास दासी बनना है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। आने वाले संडे की मुरली में पड़ रही थी 18 तारीख की, तो बाबा ने उसमें यही कहा है कि ब्राह्मण परिवार में, कई लोग सोचते बाबा आप तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो आपको देख करके ज्ञान में चलना शुरू किया, हमको थोड़ी पता था ये खिटपिट बहुत है ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण परिवार में इतनी खिटपिट है। बाबा कहे राजधानी बन रही है ना, राजधानी बननी है, वहां राजधानी में खाली राजा रानी और उसका बच्चा बच्ची चार थोड़ी होंगे, कितने दास दासियों का काफला होगा, सोचो तो सही। तो जो नहीं सुधर रहे हैं वो क्या अपना फाइनल कर, ज्ञान का बीज जरूर पड़ा है, आएंगे जरूर, लेकिन अपना पद क्या फाइनल कर रहे हैं। तो वो अगर अपना पद फाइनल कर रहे हैं तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने बहुत सुंदर कही, माला बन रही है ना, माला संगठन की निशानी है, विजयंती माला जो कहते हैं, तो विजयंती माला 108 की ही इसीलिए गाई हुई है, या 16108 की गाई हुई है ना? तो बाबा कहे कि तुम एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करो, लेकिन एक दूसरे के संस्कारों के साथ स्वयं को भी क्या करो, ट्यूनिंग कर दो, फ्रीक्वेंसी मैच कर दो, तब वो माला का स्वरूप लेंगे। जिसको अपने आप माला से निकल जाना है, उनको खींचने का कार्य क्या करना है? उनको आप खींचना चाहेंगे, उनको कंट्रोल, नहीं तुमको रहना ये माल, रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहे कि तुम बच्चों को अपना पद फाइनल करना, उस पर फोकस करना है, अपने आप को ठीक रखना है, दूसरों को देखना नहीं है। सी फादर फॉलो फादर, सी ब्रदर सिस्टर तो बाबा ने कहा ही नहीं, और फॉलो ब्रदर सिस्टर तो कहा ही नहीं, ये ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी ऐसा करूं, नहीं, इसको नहीं कहा जाता। कंट्रोलिंग पावर माना अपने अपने जीवन के लिए, अपनी कर्मेंद्रिय को, अपने आप को ठीक रखने के लिए ये बाबा ने सारे नियम मर्यादा जो दिया है वो इसलिए बाबा ने दिया है। तो अब हमें अपने आप को सोचना है कि मुझे क्या बनना है। मुझे बाबा का वारिस बनना है या मुझे साधारण प्रजा बनना है, या मुझे दास दासियों में अपने आप को फाइनल करना है, या त्रेता के अंत तक भी चलेगा, किसमें जाना है? खुली ऑफर है, वारिस बनना है तो फिर अपने आप को टाइट करना जरूरी है। इसीलिए कहा कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर जहां पर स्वयं के लिए है वहां ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन शक्ति अपने आप आने लगती है। जितना हम स्वयं को रियलाइज करते हुए महसूस करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर, ज्ञानेंद्रिय पर, उतना परिवर्तन शक्ति तीव्र गति से कार्य करने लगती और तीव्र पुरुषार्थी होकर के नंबर वन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कहा किसी के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं करना है, रूल नहीं करना है, किसी और के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए है। अपनी कमजोरियों को रियलाइज करो, महसूस करो, और उसको ठीक करने के लिए मुझे चाहे कोई भी और शक्ति भी अपनानी पड़े, अपने बुराइयों का सामना करना पड़े, उसके कारण जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही उसका सामना करके उसको ओवरकम करना पड़े, ये मुझे करना है, ठीक है ना? तो इसीलिए रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर अर्थात मैंपन और मेरेपन का अधिकार समाप्त, लेकिन मैं साक्षी हो जाऊं, निर्माण हो जाऊं और निर्माण होकर के दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनो, बाबा का वारिस बच्चा बनो, है ना? वारिस बच्चा बनने में कितनी खुशी होगी, सोचो, सहजता से पास हो जाएंगे ना, पास विथ ऑनर हो जाएंगे, और खुद को खुद से संतुष्टि, खुद से संतुष्ट हो जाएंगे। ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होने लगेगा, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
सभी ने समझ लिया होगा हमारे पास कितनी कंट्रोलिंग पावर है और रूलिंग पावर है। बढ़ाने की युक्ति भी पता चली होगी। दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।